हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है दूसरे दिन के श्रीमद् भागवत के सत्संग में। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान है। इस क्षेत्र में भाग्य से हम सब पधारे हैं। सुबह भागवत के तीसरे स्कंद तक हमने चर्चा की थी। भगवान का अवतार वाराहदेव पृथ्वी को स्थापन किया और भगवान के अवतार कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को निमित्त बताकर बनाकर विश्व भर के लिए सांख्य दर्शन के द्वारा भगवत भक्ति का मार्ग बताया। अभी आज भी कपिल देव सिद्ध के नाम से सिद्धानाम कपिलोऽस्मि, सिद्धों में मैं कपिल देव हूँ, ऐसे भगवत श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। गंगा सागर में आज भी विराजमान है। गंगा सागर कहते हैं, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर तीर्थ में समुद्र ने कपिल देव को स्थान दिया है, वहां वो विराजमान है आज भी। अब आगे हम चौथे स्कंद में आज प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में सृष्टि का जो दूसरा भागवत में जो दूसरा विषय है विसर्ग, विसर्ग मतलब विशेष सर्ग, नाम रूप आकृति सबको कैसे दी जाती है। हम सब यहां जितने बैठे हैं अलग अलग शक्लें क्यों हैं हमारी, अलग अलग विचार क्यों हैं, ऐसे पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं वो एक दूसरे से शक्ल नहीं मिलती है, एक दूसरे से कुछ विचार मिलते हैं फिर भी भेद है। खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी बोलते हैं, अरे खोपड़ी की मत न्यारी है। तो ये भगवान कितना बड़ा अभिज्ञ है। ये जो पहले भागवत के पहले मंगलाचरण के श्लोक में भगवान को अभिज्ञ कहा गया है, अभिज्ञ का अर्थ है कि वो इतना जानता है, इतना गहराई से जानता है कि हर जीव के कर्मों और वासनाओं के अनुसार उसको कैसा रूप देना है, हर एक को एक से दूसरे अलग अलग बना दिया है। कितनी जानकारी भगवान को है। दो शक्लें नहीं मिलती हैं, दो अंगूठों के निशान किसी के नहीं मिलते हैं। इतनी कारीगरी से भगवान ने सृष्टि को बनाने का कितना बड़ा काम किया है। ये भगवान कर्म का फलदाता है, कर्म का फल कोई नहीं दे सकता है, भगवान देता है। और फल स्वरूप ये हम सबको विभिन्न आकृतियां मिली हैं, विभिन्न रूप मिले हैं। तो विसर्ग के द्वारा भी भगवान ही प्रतिपाद्य वस्तु है, भगवान को ही जानना है। कितना महान है भगवान। अब आश्चर्य नहीं लगता है ये, कभी कोई ताला बनाने वाला बोलता है हमारे ताले को किसी और की चाबी नहीं मिलेगी लगेगी, तो हम कहते हैं इसका ताला लेना चाहिए, किसी और की चाबी नहीं लगेगी। यहां तो एक आदमी दूसरे जैसा नहीं बनता है, वो कितना बड़ा कमाल का आदमी होगा जिसने इस दुनिया को बनाई। कभी कभी लोग कहते हैं कंप्यूटर देखो कितना कमाल करता है, सब कुछ कंप्यूटर में पता लगता है। हम कहते हैं जिसने कंप्यूटर बनाया है उसके दिमाग को किसने बनाया उसके ऊपर विचार करो ना। कंप्यूटर कमाल है लेकिन कंप्यूटर का दिमाग किसने बनाया वो कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। भगवान जिसने उस आदमी को बनाया है उसकी तरफ नजर क्यों नहीं जाती। किसी सुंदर को देख के उसके नजदीक जाके ऐसे देख रहा था महात्मा, अरे साधु होके बड़ी सुंदर और सुंदर भी लड़की थी, उसको ऐसे देख रहा था, महाराज ये क्या कर रहे हो। बोलो मैं देख रहा हूं को इसके बनाने वाला कितना सुंदर होगा, मैं भगवान को देख रहा हूं इसके माध्यम से। यहां विसर्ग से ये दृष्टिकोण है कि संसार में जो विभिन्नता आपको दिखती है उसके पीछे उसके बनाने वाले एक भगवान के ऊपर कृष्ण कहते हैं सृष्टि का कर्ता मैं हूं, उसकी तरफ आपकी दृष्टि चली जाए तो समझ लो कि भागवत के अंदर से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इस विसर्ग के प्रसंग में आज सुबह बताया था मनु जी ने अपने वाम भाग से शत्रुपा को स्था और सीधे हाथ से मनु जी को, दो पुत्र और तीन पुत्रियां, देवहूति का वर्णन हुआ। अब आकुटी का विवाह कर दिया प्रजापति रुचि के साथ, शर्त एक के ऊपर, इसका जो लड़का होगा वो मैं गोद लूंगा, मनु जी ने कहा। तो ये परंपराएं तब से चलती हैं, लड़की के लड़के को नाना जी गोद में लिया करते थे पुराने जमाने में। स्वयं मनु ने कहा इसका जो बच्चा होगा मैं गोद लूंगा, और आकुटी का बेटा कौन हुआ? मनु को मालूम था स्वयंभू को, यज्ञ भगवान इसका बेटा होगा। यज्ञ भगवान को मनु ने अपने घर में ले लिया और कन्या हुई दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ करोगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, दक्षिणा दोगे तब यज्ञ होगा, ये दोनों सब जब साथ होंगे तब काम चलेगा। अदक्षिणा, यज्ञ में दक्षिणा नहीं देंगे तो तमोगुण हो गया। अब एक है लक्ष्मी, दक्षिणा है लक्ष्मी और यज्ञ है नारायण, असल में तो लक्ष्मी नारायण तो साथ रहते हैं, फिर इनका जीवन अपने आप में आगे चलता है। दूसरी पुत्री के विवाह का दूसरा प्रसंग या चौथे स्कंद में विशेष रूप से धर्म है इसलिए प्रसंग आता है, अनुसूया का विवाह अत्रि के साथ हुआ। आपको अच्छा लगता है, विवाह में जाना पसंद करते हैं, यहां निमंत्रण आ गया है, अत्रि का विवाह हो रहा है अनुसूया के साथ। अनुसूया किसको बोलते हैं? किसी में दोष न देखे, किसी में दोष न देखे उसको अनुसूया बोलते हैं। और अत्रि किसको बोलते हैं? जो तीनों गुणों से ऊपर हो, अत्रि, त्रयी गुण अतीत अत्रि होता है। और अनुसूया होती है किसी में दोष नहीं देखता है। जब ऐसा कभी दोनों आपस में मिल जाए, त्रिगुण अतीत और किसी में दोष नहीं देखने वाला अनुसूया, तो उनके घर में भगवान अपने आप आ जाते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। अत्रि का आश्रम है चित्रकूट में, अनुसूया और अत्रि का आश्रम चित्रकूट में है, सुंदर मंदाकिनी नदी के तट के ऊपर। और भगवान श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण अपने आप बिन बुलाए अत्रि और अनुसूया के आश्रम में चले गए थे, भगवान अपने आप चले गए थे, बुलाया नहीं था। तो जीवन आपका निर्दोष, किसी में दोष न देखो, ऐसी अगर जीवन में अनुसूया आ जाए और तीनों गुणों से प्रभावित न हो, तो भगवान आपके घर अपने आप चले आएंगे। ये धर्म की मर्यादा है। अनुसूया की एक बहुत पुरानी प्राचीन कथा है। अनुसूया कैसी नारी है? पतिव्रता नारी है। और अनुसूया पतिव्रता नारी ने सीता जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया था। कहते हैं एक ब्राह्मण रोगी था कोढ़ का, पत्नी उसकी पतिव्रता थी, अपने पति को कोढ़ का रोग था, कोढ़ समझते हैं ना, उसको कुष्ठ रोग था, ले जा रही थी। अचानक किसी ब्राह्मण को उसका पांव लग गया, ब्राह्मण कुपित होके गा कह दिया, कल सूर्य उगने तक इसको मरना चाहिए, मेरा तप भंग कर दिया। नारी ने ऐसे हाथ ऊपर करके कहा, कल सूर्य उगेगा ही नहीं, कल सूर्य उगेगा ही नहीं, और सूर्य उगा ही नहीं दूसरे दिन। वो पतिव्रता नारी थी, अब क्या किया जाए, सारे संसार में संकट हो गया। सबने कहा अनुसूया के पास जाके प्रार्थना करो, अगर वो कहेगी तो सूर्य उगेगा। अनुसूया को प्रार्थना की गई, अनुसूया आई, कहा ब्राह्मणी आप सूर्य को अपने बंधन से मुक्त करो, उसको उगने दो, संसार को प्रकाश चाहिए। बोला मेरा पति मर जाएगा। बोला ये मैं वचन देती हूं कि मैं पतिव्रता हूं तो तेरा पति नहीं मरेगा। वहां से सूर्य उगा, पति प्राण क्या निकले, अनुसूया खड़ी है, प्राण बाहर नहीं जाने दिए, वहां रोक दिए उसका पति। तो इतनी शक्तिशाली ये अनुसूया थी, इसकी पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी ने शंकर जी को कहा जाओ, लक्ष्मी को भेजा विष्णु ने, विष्णु लक्ष्मी विष्णु की पत्नी को भेजा गया और सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी। नारद ने जाके बोला आप सबकी सब लोग पूजा करते हैं लेकिन अनुसूया के बराबर आप में से कोई नहीं, पतिव्रता है बहुत बड़ी। तीनों ने अपने पति को कहा, पतियों को कहा कि आप जाइए अनुसूया के आश्रम में और उसकी परीक्षा लीजिए। तीनों आए, भिक्षा दीजिए माँ, बोला लाई भिक्षा दे दिया, बोला ऐसे नहीं निर्वस्त्र होके भिक्षा चाहिए। अच्छा तो आप छोटे बालक बनके मेरी गोद में खेलो, मैं निर्वस्त्र हो जाता हूँ। और तीनों बच्चे हो गए, और तीनों बच्चों को माँ ने बिठा दिया अपनी गोद में, और तीनों बच्चे बैठ गए हैं, वो तीनों पत्नियां ऊपर ढूंढ रही है, पति गए कहाँ, दो दिन चार दिन आया नहीं, पर ढूंढती ढूंढती पता आया। नारद को कहाँ भेज दिया हमारे पतियों को, बोला अनुसूया के वहाँ छोटे बच्चे हैं उसके आंगन में खेल रहे हैं। अभी तीनों आती हैं, तीनों ने आके प्रणाम किया कि माँ हम परीक्षा में हम फेल हो गई, आप पास हो गई, यही हमारे पति दे दो, कब तक बच्चे बन के यहाँ रहेंगे। अनुसूया ने दोष नहीं देखा तीनों में, ले जाइए। और ये अत्री विवाह के बाद अनुसूया से तपस्या करने बैठा, भगवान जगदीश्वर का ध्यान करता है, और गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु पधार रहे हैं, हंस के ऊपर ब्रह्मा जी पधार रहे हैं, और नंदी के ऊपर शंकर जी, तीनों आगे खड़े हो गए, और भी देवताओं को साथ लाए। अब अत्री बोलता है मैंने एक को बुलाया, ये पांच सात आ गए, इनमें से भगवान कौन सा कैसे पता लगे। ये भी समस्या होती है कभी, और ये समस्या भारतवर्ष में बहुत बहुत जटिल समस्या है, जिसको देखें उसको भगवान मान लेते हैं। ये बड़ी परेशानी है इस भारत देश के अंदर, लोग बड़े भ्रमित हैं, सबको भगवान मान लेते हैं, जबकि भगवान एक है। और इसी कारण से बहुत से लोग सनातन धर्म के मानने वालों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि आप बहुत भगवानों को मानते हैं, बहु भगवान को मानने वाले हैं। ये बड़ी समस्या है, कौन एक भगवान है उसकी जानकारी कैसे पता लगे, ये बहुत बड़ा संकट है। आप अत्री जी कहते हैं भगवान मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, आप सब पधार गए हैं, अब कृपा करके मुझे बताइए कैसे मैं आपको जान लूं, आप कौन हैं। तो हम दिनों गुण अवतार हैं, ये विष्णु मैं सत्वगुण का अवतार हूं, ये ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, और ये भोले बाबा तमोगुण के अवतार हैं। तीनों गुण अवतार हैं, आपने बुलाया संसार में, जगदीश्वर कह दिया इस जगत के ईश्वर है, हम इसका पालन करते हैं और सृजन करते हैं, और तीनों अत्री के पुत्र होने के लिए है, हां भर दी। अब चंद्रमा हो गया ब्रह्मा जी से, अत्री का पुत्र है चंद्रमा, वो ब्रह्मा का अंश है, विष्णु के अंश से हो गया दत्तात्रेय जी महाराज, और रुद्र अंश से हुआ कौन, दुर्वासा जी महाराज, जिसके नाम लेने से वो आशीर्वाद दे तो भी डर लगता है, कैसा के आशीर्वाद में भी खतरा है, दुर्वासा के आशीर्वाद में भी खतरा होता है। ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए अत्री को, यहां दिखाना ये है ये तीन भगवान के गुण अवतार हैं। इसमें ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है, कोई भी जीव जब भगवान की बहुत बड़ी उत्तम सेवा करता है तो उसको ब्रह्मा का पद मिल सकता है, लेकिन भगवान शंकर जीव तत्व नहीं है, केवल भगवान विष्णु एक विष्णु तत्व है। ये तत्व की बात कर रहे हैं, जीव तत्व और विष्णु तत्व दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर जो है वो विष्णु से ऐसे परिवर्तन है जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है लेकिन दही दूध का काम नहीं करेगा। सदाशिव के रूप में भगवान शंकर स्थाई रूप से रहते हैं। तो इन तीनों का वर्णन इसलिए किया गया है कि आगे चल के प्रसंग आएगा, आगे चल के प्रसंग आएगा कि शंकर भगवान जो परम वैष्णव है उसकी निंदा अहवेलना या अपराध करने से कोई धर्म का काम संपन्न नहीं हो सकता। ये बात दिखाने के लिए कि तीनों जब आए थे भगवान के आराधना के ऊपर, तीन साथ आए थे तो तीनों में से किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, एक का तिरस्कार करने से तीनों नाराज हो जाते, और संपन्न तब होगा जब तीनों आएंगे तब काम संपन्न होगा। इसलिए इसके वंश का वर्णन करते हैं कि इनके पुत्रियों से कैसे पुत्रियों से क्या क्या किसका उत्पन्न हुआ, इन सबके नाम है, उन नाम को गिनती करने से काम हमारा अभी समझ में नहीं आएगा। आप से ये सीधे सुन लो कि सबसे छोटी लड़की उनकी कौन सी थी, पहले प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, और दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का विवाह हुआ अनेक अन्य ऋषियों के साथ, वो 13 उसमें से विशेष रूप से धर्म का विवाह हुआ मूर्ति से, धर्म का विवाह हुआ मूर्ति से और पुत्र उत्पन्न हुआ नर नारायण भगवान, और नर नारायण की उत्पत्ति होते ही आकाश में मृदंग बजने लगे, गंधर्वादी गाने लगे, तो नर नारायण का प्रकट्य मूर्ति और धर्म से हुआ। धर्म की और पत्नियों का नाम बड़ा सुंदर है, कोई श्रद्धा है, कोई तुष्टि है, कोई पुष्टि है, ये नाम ले, और उनके पुत्रों के नाम भी देखना, कोई सुख है, कोई संतोष है। जीवन में धर्म के ऊपर चलेंगे तो सुख और संतोष मिलेगा। ये नाम बड़े विचित्र है, इन नामों को देख के अपने जीवन में गुण पैदा करने चाहिए। फिर कहते हैं सबसे जो छोटी कन्या थी वो भगवान शंकर के साथ विवाह कर दिया गया, लेकिन वो छोटी आयु में ही उसने प्राण त्याग दिए सती ने, इसलिए उसके संतान का वर्णन नहीं है। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय महाराज ऐसे कैसे हो गया, सती को क्यों नहीं कोई संतान हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं बात आप अच्छी पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी सभा लगी थी, महायज्ञ होने वाला था, प्रजापति सब इकट्ठे हुए, ब्रह्मा जी पधारे थे, भगवान शंकर भी आसन लगा के बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति वहां पधारे, सब उठ के खड़े हो गए, सबने सम्मान किया, ब्रह्मा जी नहीं उठे और शंकर भगवान भी नहीं उठे। दक्ष ने सबको ऐसे देखा चारों ओर से। इस संसार में जिसको सम्मान लेने की आदत पड़ जाती है ना, उसको कहीं थोड़ा भी अपमान होता है ना तो वो सहन नहीं कर सकता है, इसलिए संसार में सम्मान की आदत कम डालो तो अच्छा है। अब सब उठ के खड़े होते थे पहले, आज देखा कि ब्रह्मा तो चलो कोई बात नहीं, हमारा पिताजी है, ये नहीं उठा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा जमाता है ना, जमाई है, ये तो मेरा बेटा के भी छोटा, इसको तो उठना चाहिए ना शंकर को, ये भी नहीं उठा। अब दक्ष ऐसे देख के चारों ओर से सभा में कहता है सुन लो सब, सब सुन लो, ये ब्रह्मा जी ने कहा तो मैंने मेरी लड़की इसको दी, मुझे क्या पता कि भूतों के साथ रहता है शमशान भूमि में, घर भी आज तक नहीं बनाया, कहां मेरी बेटी सुख से रहेगी। और भगवान शंकर ने आजकल घर नहीं बनाया, उसका एक नाम है अनिकेत, अनिकेत निकेतन नहीं है, घर है ही नहीं। और आपको मजे की बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के लक्षण में कहा है अनिकेत निकेत, जिसके पास घर नहीं है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर महावैष्णु है। वैष्णव नाम यथा शंभू भागवत कहेगी, वैष्णव नाम यथा शंभू, घर नहीं बनाया बाबा ने, घर बनाएगा कोई दरवाजा खटकाए घंटी बजाए तब आएगा ना भगत भोलेनाथ के पास, जब चाहे तब घर में घुस जाओ, दरवाजा ही नहीं है, कोई परेशानी काहे की, इसलिए बहुत। लेकिन एक बात आपको बता दूं, भोले बाबा की घर गृहस्थी बहुत मजेदार है, गृहस्थी में जाओ तो भोले से एक सीखा बात सीख लो, क्या बाबा जी किसके ऊपर चढ़ के झूमते हैं, नंदी बेल है ना, और मैया उनकी पत्नी पार्वती के पास क्या सवारी है, और घर में दोनों बांधेंगे तो कैसे काम चलेगा, शेर बेल को खाएगा कि नहीं खाएगा, हाँ घर में होगा झगड़ा कि नहीं होगा। और एक बाबा का बेटा है गणपति, किसके ऊपर चढ़ के घूमता है, और बाबा के गले में क्या है, अब सांप चूहे को खाएगा कि नहीं खाएगा, अब बाबा गणपति अपना कहां वाहन को पार्किंग कहां करेगा, तो चूहा तो सांप घूम रहे। अब दूसरे पुत्र कार्तिकेय की तरफ आइए, कार्तिकेय बाबा किसके ऊपर चढ़ के घूमता है, मोर के, और सांप बाबा के गले में वो कैसे बैठ गया, ऐसे घूमेगा आगे पीछे होगा कि नहीं होगा, मोर सांप को पकड़ता है। इतनी परेशानियों के बीच में बाबा ऐसे समाधि में बैठे सिखा रहे हैं कि गृहस्थ में ऐसे झगड़े होंगे फिर भी आप भगवान को याद करोगे तो सुखी रहोगे, ये झगड़े होंगे शांति से नहीं रह सकते हैं, सब एक दूसरे के शत्रु हैं, उसके बीच में समाधि में रह सकता है भगवान बाबा शंकर, ये बहुत बड़ी विशेष बात है। किसी कवि ने कह दिया इसलिए बोल भोले ने विष पी लिया, बोला इसके बीच में कैसे रहूंगा मैं देखिए कहने का है कि विष पी के ये बड़ा विष के घूंट पीने के बराबर है, इस जीवन में ऐसे रहना है विष का घूंट पीना, लेकिन फिर भी अगर भगवान के ऊपर ध्यान आपका टिका हुआ है तो ये समस्याएं आपके सामने दिखाई नहीं देंगी। इसलिए भगवान शंकर दो ही चीजें करते हुए दिखेंगे, या तो ध्यान में मगन होंगे नहीं तो पार्वती को कथा सुनाते होंगे, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, दो ही काम है, तीसरा काम बाबा के पास नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं शंकर जी के पास। तो भगवान शंकर के ऊपर दक्ष जी ने उंगली उठा के कहा आप सब सुन रहे हो, इसने ये ऐसा है, इसे ऐसा है, ये ऐसा है। शंकर जी तो शांत अपने आनंद में रहे, बिल्कुल मुख से न मुख न चेहरे के ऊपर क्रोध आया न द्वेष आया, शांत रहे। लेकिन वो नंदी बाबा और बाबा जी के जो जो चेले थे ना वो खड़े हो गए और कहने लगे ये बै 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 कर रहा है ना, बकरी बकरी बन जाए, इसको बकरी जैसा बन जाना, इतना सारा बोल रहा है ज्यादा, एक शराब देना। अब ब्राह्मण बैठ के उठ के शराब देने लगे उनके चेलों को, भगवान शंकर के, इसके पूजने वाले सब नशे ही हो जाएंगे, कोई इनसे बात नहीं करेगा। अब वो कहते हैं ये ब्राह्मण जिसका आएगा उसको खाएगा, एक दूसरे को शराब पैसे देने लगे, एक के ऊपर दूसरे का शराब। और दक्ष ने बायकॉट किया असेंबली का, अरे एक शंकर जी के ऊपर क्रोध आया, आपका जमाई था, बाकी ब्रह्मा जी आपका पिता बैठा था और सारे ऋषि बैठे, उनको छोड़ के चले गए, ये सबका अपमान हो गया। शंकर जी भी चुपचाप करके वहां से चले गए अपने घर। अब विदुर जी को बता रहे हैं मैत्रेय जी कि शंकर जी तो चले गए कैलाश, पत्नी को नहीं बताया कि सुसर जी मेरे ने, आपके पिता ने मेरा अपमान किया है, नहीं बताया। बहुत अच्छी बात है, जीवन में सीख लो, आप लोग सीख लो, ससुराल वालों से आपको कुछ कष्ट हो तो पत्नी को कभी नहीं कहना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा है, चाहे घर आप में के में रहती है लेकिन उसका स्नेह अपने पिता और भाइयों से होता है। भगवान शंकर बड़ी बहुमूल्य सीखा दे रहे हैं, लड़की अपने पिता की निंदा कभी नहीं सुन सकती, अपने भाइयों की निंदा नहीं सुनती, कभी भी नहीं सुन सकती। इसलिए भोले बाबा ने बताया नहीं कि क्या हुआ हमारा, शांत रह गए। एक दिन आकाश से विमान उड़ते जाए हैं, जा रहे हैं ऊपर से देवता अपनी पत्नियों के साथ, पत्नियों के साथ ऋषि मुनि ऐसे खड़ी होकर प्रसूति अब सती देखती है कहाँ जा रहे हैं सब। दक्ष प्रजापति ने बड़ा यज्ञ किया है, सब हम उधर जा रहे हैं। दक्ष प्रताप, वो तो मेरा पिता है, मेरे पिता यज्ञ कर रहा है, ये सब ले मेरे पिता के घर जा रहे हैं। वापस आके प्रणाम करके कहती है महादेव जी आपको मालूम है हमारे पिता बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, देखो ऊपर से विमान में सब जा रहे हैं ना, हमको भी जाना चाहिए, मेरी बहनें आएंगी उनसे मिलूंगी मैं, पिता माता को देखे को बहुत दिन हो गया, जाऊं ना। शंकर जी कहते हैं निमंत्रण आया नहीं है, बिन बुलाए मेहमान होना ठीक नहीं है। सती कहती है बिन बुलाए, अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, मंदिर के अंदर बिन बुलाए जाने में कौन सी आपत्ति है, तो पिताजी का घर है ना। शंकर जी कहते हैं भूल से अगर नहीं बुलाए तो उसके घर में जाने में कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के कोई नहीं बुलाए द्वेष के कारण, फिर जाओगे तो अपमान होगा। सती कहती है कि मेरा मन मेरी माता पिता का दर्शन, बहनों का दर्शन करना है। शंकर जी चुप, आप जाएंगी तो बात अच्छी नहीं होगी दक्षिणायनी, वहां आपका अपमान होगा और अपमान मृत्यु से ज्यादा भयानक होता है, अपमान और अपकृति मृत्यु से ज्यादा भयानक है। शंकर जी तो अपनी समाधि बैठे, लेकिन सती बाहर ऐसे घूमने लगी आंखें आगे पीछे और शंकर जी को भी ऐसे देखने लगी जैसे भस्म कर देगी। जब जब लड़की को उसके मां बाप के घर जाने से रोकते हैं ना, तो वो अंदर से आग उगलती है और भस्म करने के लिए सोचती है, उसके मन में ऐसा विचार आता है। अब शंकर जी देख नहीं रहे, शंकर जी ने सोचा कि अब ये यहां रहेगी तो माता पिता की चिंता में मरेगी, वो मरेगी तो फिर उनकी चिंतन किसका होगा, दक्ष और उनका चिंतन होगा, और यहां से जाएगी तो वहां भी मरेगी, लेकिन वहां मरेगी तो मेरा चिंतन हो करती हुई मरेगी तो वापस मेरे पास आएगी ना, बहुत बड़ा सिद्धांत है और बुद्धिमानी का काम भी है। अगर झगड़ा ही घर में किया है पत्नी और जबरदस्ती जान जाए, जाइए अपने जाए जाए अपने मायके में जाके मरे, मेरे घर में क्यों मरा पड़े, चलकर में जाओ, मरना हो तो जाके अपने पिता के घर में मरो, यहां काहे के लिए झमेला कर रही हो। अब सती ने कहा मैं तो जा रही हूं, शंकर से नहीं कहा, तैयारी की। और नंदी ने कहा मैं तो चलूंगा, अकेले कैसे जाने दूंगा, मालकिन जा रही है ना। और फिर उसके लिए उसके गाना बजाना बहुत सुंदर आता था सती को, वो बेना भी बजाती थी गाती थी, और फिर गण शिव जी के और गण साथ हुए और चल के आके सब कहां पहुंचे, हरिद्वार में कनखल के पास। कनखल में वो स्थान है जहां सती ने जहां दक्ष ने यज्ञ किया था, वो यज्ञ कुंड है। और उस स्थान की महात्म ये बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक समय पे एक यहां इकट्ठे हुए थे, तीनों देव एक जगह पे एक समय में पधारे थे कनखल में, उस स्थान के ऊपर। हरिद्वार जाके कनखल में तो सब गए होंगे, नहीं होंगे तो जाके कभी उस स्थान को देख लेना। अब सती जैसे गई पहले उसकी नजर पड़ी यज्ञशाला में, हाँ इसमें शंकर जी के लिए कहीं स्थान नहीं रखा है। और फिर देखा कि कोई सम्मान नहीं कर रहा है, वो दक्ष के भय से कोई सती आप आइए ऐसे में, केवल मां ने कहा बेटी आइए, बहनों ने बात की लेकिन सती समझ गई एक मिनट में। वहां तो पीहर का प्रेम, वहां तो पिता माता का प्रेम, बहनों का प्रेम उमड़ रहा था भागने के लिए, यहां आ गई और पति का अपमान देखा। सती को पति का प्रेम हृदय के अंदर जो था जुदाई में वो जाग गया और सती खड़ी होकर कहती है, दक्ष तुम्हारी बेटी मेरे को मैं कहूं कहेगा जब मैं शंकर जाऊं के पास वापस जाऊंगी तो मुझे दक्षिणा ही दक्षिणा नहीं कहेगा ना कि दक्ष की बेटी हो, ये कहेगा ना जिसका तुमने अपमान किया है, ये शरीर तुमने दिया ना, इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती हूं। अरे भगवान शंकर जिसकी ब्रह्म आदि उपासना करते हैं वो इतना पूजने है, उसका आपने अपमान किया है, मैं ये शरीर आपका दिया नहीं रखना चाहती हूं। और सती अपने योग अग्नि अपने शरीर से योग अग्नि पैदा किया और सती ने अपना शरीर वहां छोड़ दिया। सती ने शरीर छोड़ दिया, जो गण आए थे उठ के ये सब यज्ञ का सामान इधर से उधर फेंकने लगे। अब तो यज्ञ के रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों ने वहां यज्ञ के अंदर आहुति ऐसी डाली चारों ओर से, कुछ ऐसे देव निकले जो भगाने लगे और शंकर के ये सारे गण भाग के वापस कैलाश पहुंचने लगे। ऊपर से नारद घूमता हुआ जाके कहता, भोलेनाथ बाबा प्रणाम, कैसे ठीक है, आपको सब समाचार मिला? बोला क्या समाचार? सती ने प्राण त्याग दिया। बस ऐसे नारद जी के तो ऐसे कहना था, सती ने प्राण त्याग दिया। भोलेनाथ से बैठे बैठे एक बाल ऐसे लगा के ऐसे नीचे फेंका और वीरभद्र उत्पन्न हुआ और वीरभद्र आ गया। बोला दक्ष के यज्ञ में जाके वहां उनको थोड़ा उपद्रव कर रहे हैं तो जरा शांति करा दो। अब वीरभद्र चला और पीछे गण चले और उसके चलने से भृगु आदि जो यज्ञ कर रहे थे, ये तूफान कहां से आया, अंधकार कहां से, अभी तो शाम नहीं हुई है, अंधकार कहां से आ रही है? अब सती की मां कह रही है प्रसूति की, आपने अपमान किया है भगवान शंकर का, ये आंधी वहां से आ रही है। और आंधी क्या आती है, वीरभद्र ने आते ही यज्ञशाला में ऐसा उधम मचाया, पहले तो दक्ष को पकड़ा और दक्ष को पकड़ के उसका गर्दन को काटना, और काटा क्या नहीं कट रहा था, वो लकड़ी जिससे काटते हैं बकरे को उससे गर्दन काटा, उठा के दक्षिण अग्नि के अंदर स्वाहा किया। और उसके बाद इधर उधर देखे, वो भृगु बाबा को देखा, बोला ऐसे दाढ़ी हिला रहा था, खींच के दाढ़ी को निकाला और पूछा का दांत और आंख निकाल दी भग की, और अब उस किसी ब्राह्मण का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, बहुत बड़ा यहां उपद्रव मच गया। हरे राम, हाय हाय करके सारे ब्राह्मण भाग गए। देवता जो आए थे वहां यज्ञ का भाग लेने के लिए, वो ब्रह्मा जी को कहते हैं, बाबा बाबा वहां देखो हाल यज्ञ के अंदर, हमारा तो बहुत बुरा हाल है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव नहीं, किसी की आंख नहीं। एक ब्रह्मा जी उस यज्ञ में गए नहीं थे, ये भी एक बुद्धिमानी की बात है, सीख लो। आपको कहीं से निमंत्रण आए और आपको संदेह हो तो के वहां झगड़ा होना है, मन नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी को मालूम था कि वहां शिव का अपमान होगा, महावैष्णो का अपमान होगा, यज्ञ भंग होगा, इसलिए शंकर जी गए नहीं। निमंत्रण था, चिट्ठी आई थी, लेकिन गए नहीं। सब दावतों में जाना भी जरूरी नहीं है। अब शंकर अब नहीं गए थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को जब प्रार्थना की गई, ब्रह्मा जी कहते आप इतने महान देव शंकर का अपमान करोगे तो कहां आपका काम सिद्ध होगा। अब उसको चल के मनाते हैं। अब आगे ब्रह्मा जी सब देवता साथ, देखा तो भोलेनाथ संत सनकादि कुमार बैठे हैं और ऐसे ज्ञान मुद्रा में बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा बाबा गुस्से में तो नहीं है, क्रोध तो बाबा को नहीं है, शांत है। जाके सबने प्रणाम किया, आप तो बड़े दयालु हैं, दक्ष की रक्षा कीजिए, उसको जीवन दीजिए। ब्रह्मा ने कहा मैंने उसको प्रजापति को उत्पन्न किया था। शंकर ने बोला आप कहते हैं तो चलिए, क्या करना है। ऐसे नहीं कहा कि ये देखो एक वैष्णव का गुण है, साधु का गुण है, अपमान करे कोई लेकिन मनाने आए तो सब कुछ भूल के चला जाना चाहिए, सब कुछ एकदम भूल के। संसार में आप दुखी क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं, हम भूलते नहीं है। किसी ने कभी एक शब्द कह दिया, हम उसको ऐसे पकड़ के बैठ के, वो आदमी भी चला गया लेकिन हम उस आदमी को जबरदस्ती अपने दिल में पकड़ के बैठे हुए हैं। मुझे ऐसे कह के गया था, निकाल दो। जिस आदमी को आप आंखों से देखना नहीं चाहते हो, उससे इतना द्वेष करते हो, उसको दिल के अंदर क्यों बिठा के बैठते हो? ये बुद्धि का काम है क्या? मैं देखना नहीं चाहता हूं इसका मुंह, लेकिन सारा दिन उसी को याद करते हो, ये कौन सी बुद्धिमान है? उठा के निकाल के फेंक दो ना उसको दिल से। भोलेनाथ को कहा कि आप चलिए महाराज, चलिए चलते। अब शंकर जी वहां आए, सबने कहा आप कृपा करके आपके ससुर जी को जीवित कीजिए। बोले जीवित तो मैं कर लूं, लेकिन इसका सर दक्षिण अग्नि में चला गया, वहां से तो वापस नहीं आएगा। वो अग्नि में आपको डालना था बकरे का सर, वो जो जिसकी बलि चढ़ानी थी, अब वही सर बचा हुआ है, आप कहें तो वो लगा देता हूं। और शंकर भगवान ने ये दूसरी बार हेड ट्रांसप्लांटेशन की, महासर्जरी की, पहले अपने बेटे गणेश के सर के ऊपर हाथी का सर लगा दिया था और अब अपने ससुर के ऊपर बकरे का सर लगाया। बकरे का सर लगते ही दक्ष प्रजापति ऐसे जाके शंकर के चरणों में गिर पड़ा कि मुझे क्षमा करना, अपराध हो गया मुझसे एकदम। लेकिन बकरे का सर अभी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चढ़ गया। तब सबने कहा अभी बाकी ब्राह्मणों का बड़ा ठीक है, सबका अंग भंग ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी ये हैं तो संबंधी ससुराल के पक्ष के हैं ना, अभी आंख की क्या जरूरत है, ये ऐसे बगैर आंख के देख रहा है, सूर्य के प्रकाश से देखा, और बग ये अपने यजमान के मुख से खाता रहेगा, नहीं तो आटा खाएगा तो चार काम चल जाएगा इसका चने के आटे से। और भृगु जी की दाढ़ी के लिए वो बकरे का बाकी जो बची हुई दाढ़ी का टुकड़ा है यहाँ चपका दो, चपक जाएगा। भगवान शंकर भोलेनाथ ने ऐसे अब ये सब यहां हो रहा है, इतनी देर में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। अब जब एक बार दक्ष ने प्रार्थना कर दी ना, शंकर जी से अपनी क्षमा याचना कर दी, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आ गए। भगवान विष्णु के आने के बाद सबने उनकी प्रार्थना की, सबने उनको प्रणाम किया, भगवान शंकर ने भी, ब्रह्मा जी ने, आदि देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और तब कहा कि अब यज्ञ संपन्न करो। और उसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ सात अध्यायों में चौथे स्कंद में। धर्म की प्राप्ति के लिए यज्ञ का अंग है और इस यज्ञ से धर्म सिद्ध होता है, लेकिन धर्म सिद्ध होता है जब यज्ञपति विष्णु की प्रसन्नता होती है, और विष्णु की प्रसन्नता में वैष्णवों का अपराध सबसे बड़ी बाधा है, यह शिक्षा इन सात अध्यायों से मिलती है। इसके बाद पांच अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज का चरित्र है। उत्तानपाद स्वयंभू मनु का बेटा, उसकी विवाह हुआ दो पत्नियां, सुरुचि और सुनीति। सुनीति वो जो नीति के ऊपर चले और अच्छी नीति के ऊपर चले, और सुरुचि वो जो अपनी मनमानी करे, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करूंगा। सुरुचि से इतना उत्तानपाद प्रेम करता था कि उसके प्रेम के पास में बंधा हुआ है, उसके सामने बोल नहीं सकता है। और एक दिन, ध्रुव का अर्थ होता है स्थाई, जो सदा रहने वाला है उसको ध्रुव कहते हैं, ध्रुवम अटल है जो, और उत्तम का अर्थ है तत्काल। उत्तम का मतलब अभी तत्काल है, कल थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो ध्रुव है सुनीति का बेटा, उत्तम है सुरुचि का बेटा। सुरुचि अगर रुचि से काम करेंगे तो थोड़ी सी तत्काल सुख मिलेगा, लेकिन सुनीति से काम करेंगे तो स्थाई सुख मिलेगा। ध्रुव की तरह जीवन में सुनीति से चलना चाहिए। अब सुनीति का बेटा ध्रुव आता है। अच्छा, यहां एक बात कर दें कि ध्रुव था कौन? बहुत बड़े ऋषि थे, और ऋषि होते हुए एक राजा के राजकुमार को जाते हुए देखा, मन में थोड़ा सा ऐसे भाव आया कि राजकुमार बड़ा सुंदर है, और प्राण त्यागते हुए राजकुमार बनाने की मन में एक इच्छा रह गई थी। अब ऋषि बहुत ऊपर का पद है, राजकुमार उसके सामने तुच्छ है, तो भगवान ने कहा इसको वापस बुलाने के लिए इसका अपमान करना आवश्यक है। तो ये लीला कैसे जुड़ती है? ध्रुव छोटा सा अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहता है। सुरुचि कहती है इस गोद में चढ़ने के लिए जाओ, भगवान की प्रार्थना करो, भक्ति करो, और जब ये शरीर छोड़ो तो भगवान को कहो कि सुरुचि के गर्भ में तुमको डाले, मेरा बेटा बनोगे, तब यहां बैठ पाओगे। ध्रुव को तो ऐसे मां के शब्द लगे जैसे बाण लगे, और छोटा बच्चा, मासी ने अपमान कर दिया। ध्रुव को बहुत आंखों से आंसू बह रहे हैं और सांप की तरह थुथकार रहा है, कर कुछ नहीं सकता है, छोटा बेटा है। सुरुचि ने बात तो अच्छी की कि जाके भगवान की प्रार्थना करो, उसको पालो, लेकिन भगवान की प्रार्थना के बाद भी मेरे गर्भ में आओ, ये तो भगवान की प्रार्थना का अपमान है कि भगवान मिलने के बाद भी तेरे गर्भ में आना पड़ेगा। ये भगवान का जो अपमान किया सुरुचि ने, उसके पुत्र का भी मृत्यु हुआ और उसको भी जल्दी मरना पड़ा, ये उस अपमान के कारण। अब भगवान की भक्ति का अपमान है। अब ध्रुव वहां से आके अपनी माँ के चरणों में गिरते कहता है, माँ माँ इस तरीके से मेरे को माँ पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया। माँ कहती है, हूं तो मैं बड़ी रानी लेकिन आपका पिता मेरी बात तो नहीं मानता है बेटा। अब किसी के पास समस्या हो तो राजा को जाके बताएं, जब राजा ही कुछ नहीं कहता है तो एक भगवान बचता है उसको प्रार्थना करने से कहा। माँ भगवान कहाँ मिलेगा बेटा, राजा महाराजा वन में जाते हैं। माँ मैं वन में जाऊं भगवान के लिए? सुनीति कहते हैं, बेटा निश्चित रूप से जाओ, भगवान ही तुम्हारा कल्याण करे। माँ ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव वन की तरफ चला। भगवान का भेजा हुआ नारद सामने आगे खड़ा हो गया। ध्रुव कहता है, महर्षि प्रणाम। ऐसे प्रणाम दंडवत नहीं किया, हाथ जोड़ा। कहाँ जा रहे हो बच्चे? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे को गोद में नहीं बैठने दिया, तेरी माँ ने तेरा अपमान किया। चलो चलो मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगा, गोद में बैठना है ना। नारद कहता है ना, ध्रुव कहता है, महाराज क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय अब घर से निकला हूं भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को प्राप्त करने में सहयोग कर सकते हो तो मुझे बताओ, नहीं तो अपना रास्ता नापो मैं जाऊंगा। नारद ने बजा के देखा कि ये शिष्य पक्का है, कच्चा नहीं है। एक संत हुए हैं राजस्थान में, दादू महाराज। एक पुलिस का आदमी रिटायर हुआ पुलिस की नौकरी से, सुना के दादू बहुत बड़े संत हैं, उसका दर्शन करना चाहिए। घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहा है, जिस गांव में दादू रहता है उसके बाहर पहुंचा तो एक आदमी को देखा, सर से सर बिल्कुल टकला था, कुछ सर के ऊपर बाल वाल नहीं थे और लकड़ी कुछ ले रहा। उसे बोला, इधर आओ। पहले तो गंजे को देखने से अपशकन होते हैं, सर के ऊपर एक दे मारा डंडा ऐसे, पुलिस वाला तो था ना, उसको हाथ से जोर से मारा। फिर कहां रहते हैं दादू? बोला, अगले सामने कुटिया है। अब पुलिस वाला वहां जाके बैठा कुटिया में, सब लोग आके बैठे और थोड़ी देर से अंदर से कुटिया से वही जिसको सर के ऊपर मारा था दादू महाराज आके बैठा। और वही दादू महाराज बैठा, सब लोग बैठे। अब ये पुलिस वाला दिल में शर्म आ रही है, मैं महाराज जिसका दर्शन करने आया उसको मिलने से पहले गुरुजी को दो चार तो सर के ऊपर मार के आया हूं। अब सब उठ गए, जाके चरणों में गिरा के, महाराज मेरे से अपराध हो गया। वो हंस के कहता है, दादू बेटा मटका लेते हैं लोग बजा के लेते हैं, तू गुरु कर रहे हो बजा के लिया, इसमें कौन सी खराबी कर दी? बजा के लेते हैं ना, पक्का है कि कच्चा है? तो नारद जी भी बजा रहे थे कि ये कच्चा है कि पक्का है। ध्रुव निकला पक्का। अब नारद ने कहा, बेटा ये 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ये सामने महाबन है, जमुना का तट है, ये टीला है ध्रुव, इसके ऊपर जाके बैठो। पहले अध्याय में ध्रुव की तपस्या का वर्णन है, 8वां अध्याय ध्रुव की तपस्या है। पहले महीने में तो कुछ फल खा रहा है, दूसरे महीने में पत्ते खा रहा है, तीसरे महीने में हवा खा रहा है, एक पांव पे खड़ा है, ऐसा ध्यान कर रहा है भगवान का किस चारों ओर सब जगह हिलने लगा। भगवान वहां से विष्णु गरुड़ के ऊपर चढ़ के ध्रुव के सामने 6 महीने में आके खड़े हो गए। इस तरफ ध्रुव के पास तो भगवान आ रहे हैं, लेकिन उत्तानपाद का समाचार सुन लीजिए। उत्तानपाद इसके बाद दिल में दुख करता है, मेरा छोटा सा बालक वन में गया, कैसे उस कौन उसकी देखभाल करेगा, कैसे मैं कितना कि मैंने क्या इतना कितना स्त्री के वश में हो गया हूं कि मैं छोटे बालक को घर से ऐसे जाने दे दिया। बड़ा तब तो उनको बहुत दुख हुआ अपने आप में, खिन्न भाव आया। लेकिन वहां भगवान विष्णु को देखा, भगवान विष्णु सामने खड़े हुए, ध्रुव आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है, अंदर में भगवान विष्णु को देख रहा है। भगवान ने देखा कि मैं आया इसके पास, ये आंखें नहीं खोल रहा है छोटा बेटा, क्या बात है? भगवान ने अंदर से जो चतुर्भुज रूप था उसको लुप्त कर दिया और नहीं दिखा तो छटपटा के ध्रुव ने आंखें खोली। ध्रुव ने तो सामने वो ही देखा जो अंदर देख रहा था, और एकदम प्रणाम करता है ध्रुव, भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया, बहुत सुंदर प्रार्थना की। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव कहते हैं, महाराज अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मैं घर से निकला था, मैंने बोला मेरे को मेरे पिता की गोद में बैठना है अथवा राज प्राप्त करना है, अब आपको पाने के बाद भगवान मेरे को राज पाने की इच्छा नहीं। लेकिन भगवान कहते बेटा अभी तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम राज करो, तेरे लिए मैंने बहुत सुंदर ध्रुव लोक बनाया है, उस ध्रुव लोक में तुम निवास करोगे, लेकिन उससे पहले तुम बहुत दीर्घ काल तक इस पृथ्वी के ऊपर राज करो, ये मेरा आदेश है। ध्रुव भगवान का दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, उत्तानपाद को समाचार मिला कि ध्रुव वापस आ रहा है, उत्थान बाद स्वागत के लिए खड़ा है। वन के अंदर से ध्रुव को आते देखा, पिता ने ध्रुव को गले लगाया, आंसुओं से ध्रुव को नहला दिया, उठा के उत्थान पाद ध्रुव को अपने घर में ले गया। अब तो सुरुचि भी ध्रुव को प्रेम कर रही है, सुनीति तो वैसे भी उनकी माँ है, बड़ा प्रेम किया। समय आने के पर उत्थान पाद ने अपना राज छोड़ा, ध्रुव को राजपद मिला, ध्रुव राजा बने। और उस बीच में ध्रुव के भाई उत्तम को यक्ष ने मार दिया, यक्षु ने मार दिया उत्तम को, ध्रुव महाराज को, क्योंकि राज की परपंच के बाद क्रोध आना भी आवश्यक है। भाई के मारने के ऊपर क्रोध आया और ध्रुव जी युद्ध करने के लिए यक्षु से अलकापुरी चले गए। अब बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, यक्षु ने फिर माया अपनी फैलाई चारों ओर से, ध्रुव बड़ा विचलित हो गया कि आसमान से कहीं अंगारे गिर रहे हैं, कभी मलमूत्र गिर रहा है। तो ऋषियों को भगवान ने भेजा ध्रुव की सहायता के लिए, ऋषियों ने आश्वासन दिया और फिर ध्रुव युद्ध करने लगा। अब अपनी रक्षा के लिए कुबेर जी आने लगे, तब ब्रह्मा जी, तब स्वयंभू मनु ध्रुव के दादा परम वैष्णव ऊपर उत्तर के नीचे आए, ध्रुव को बोला बेटा एक यक्ष ने तुम्हारे भाइयों को मारा है ना, तू सारे कुल का नाश कर रहा है। अरे भगवान को वो प्रिय होता है जो जो नीचे होते हैं उसके ऊपर दया करे, बराबर के होते हैं उससे प्रेम करे, वरुण की सेवा करे, भगवान को उससे प्रसन्नता होती है। बेटा ये क्रोध को छोड़ दो। और कुबेर बड़ा प्रसन्न होगा, वो भगवान का दिग्पाल है। कुबेर प्रसन्न हुआ ध्रुव के ऊपर, ध्रुव जी वापस आए। अब राजपाट अपने बेटे उत्कल, तो ध्रुव का बेटा उत्कल तो इतना त्यागी हुआ बोला राज नहीं चाहिए, अब दूत होके चला गया। फिर ध्रुव के दूसरे बेटे से उसका वंश चला, ध्रुव चला गया बद्रिकाश्रम में। अब बद्रिकाश्रम में ध्रुव तपस्या कर रहा है, दोबारा जाके ध्रुव तपस्या कर रहा है। एक बात देखिए भागवत में, ये बार बार देखने को मिलेगी आपको, भगवान विष्णु के दर्शन के बाद भी ध्रुव को क्रोध आया और उस क्रोध में भगवान के महाभागवत स्वयंभू मनु ने उनको उपदेश दिया। ऐसे आपको ये क्रम भागवत में मिलेगा, भगवान के दर्शन के बाद भी भगवान के भक्तों की कृपा होगी तभी संसार सागर से पार होंगे। ये बहुत बड़ा विलक्षण भागवत का, भागवत भक्तों की महिमा का शास्त्र है। भगवान की तो महिमा है ही, लेकिन भगवान के भक्त कितने महान है उसका अद्भुत वर्णन है भागवत के अंदर। कि भगवान, कल भी हमने ये कहा था महाप्रभु के शब्दों को, भक्त भक्ति जन्म भक्त संगे, भक्ति का जन्म भक्त के संग में, भक्ति मिल जाए फिर भी भक्त का संग मुख्य अंग है। तो ये बार बार आपको मिलेगा। अब ध्रुव महाराज के लिए विमान आया, नंद सुनंदन विमान लेके आए वैकुंठ का। ध्रुव नहा धोके अलकनंदा से, गंगा से नहा धोके तैयार होके चढ़ने लगा, मृत्यु साक्षात आके खड़ी हो गई। महाराज मृत्यु लोग है, और ध्रुव ने मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के दिव्य शरीर में विमान के ऊपर चढ़ा, और विमान के ऊपर चढ़ के विमान उड़ा, ध्रुव के दर ठहरो रोको, मेरी मां जिसने मेरा मार्ग दर्शन किया था भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको साथ ले जाऊंगा। और विमान के चालक बोलते हैं ध्रुव जी देखो आगे वाले विमान में आपकी माता आपसे पहले जा रही है, शिक्षा क्या ग्रहण करनी है, जो एक बार उंगली से आपको भगवान के तरफ जाने का मंदिर का भी रास्ता दिखा देना, आपको भगवान मिल जाए तो कहना वो मेरे को जिसने आपके पास भेजा था उसके ऊपर कृपा करके उसको भी ले चलो। कभी भी जो आपकी भक्ति में सहायता करे, भगवान के रास्ते में ले जाने वाला हो, उसी को कभी भूलना मत, उसी को, इसको बोलते कीर्तघन मत बनना। ध्रुव ने अपनी माँ के लिए सोचा, और माँ तो पहले ही वैकुंठ की तरफ जा रही थी। इन पांच अध्यायों में ये ध्रुव चरित्र का है, दिव्य अर्थ की प्राप्ति, यहाँ अर्थ भगवान विष्णु की प्राप्ति का लक्ष्य है। वहाँ यज्ञ भगवान विष्णु धर्म के रूप में, यहाँ अर्थ भगवान विष्णु के रूप में है। अर्थ भी परम अर्थ तो भगवान विष्णु ही परम धन है। तो यहाँ ध्रुव महाराज का ये चरित्र संपन्न होता है पांच अध्यायों में, 7 और 5 12 हो गए। अब 11 अध्यायों में ध्रुव के वंश में महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन है, जो भगवान का अंश अवतार है। जिस अब यहां ये ध्रुव वंश के अंदर महाराज हुए अंग, क्या नाम, महाराज अंग। महाराज अंग को कोई पुत्र नहीं था, यज्ञ कराया कि पुत्र प्राप्त हो, ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, यज्ञ से पुत्र प्राप्त हुआ, और पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम हुआ वेण, और वेण ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसको पंडितों ने कहा कि महाराज ये पिता का घातक है और संसार में किसी को सुखी नहीं रहने देगा। अब अंग महाराज कहते हैं पहले तो मुझे दुख था कि पुत्र नहीं है, अब पुत्र ऐसा पैदा हुआ है जो मेरी अपकीर्ति, मेरा अपमान, मेरा अपयश कर रहा है, और बहुत दुखियों के सुधारने का प्रयास करा, पुत्र सुधर नहीं पाया। रात रात को महाराज अंगराज छोड़ के चले गए। शिक्षा क्या मिलती है? कभी घर में बेटा भी पैदा होता है तो दुख देने के लिए होता है। पहले बेटे न होने का दुख था, होने के बाद उसके बदमाशी का दुख है। संसार के अंदर कभी बच्चा पैदा होता है ना, कोई तो सुख देने के लिए आता है, कभी कोई ऐसा भी होता है पूर्व जन्म का शत्रु होता है, घर में बेटा बन के आता है और बहुत कष्ट देता है। इसलिए, और जब कष्ट भी देता है तो महाराज अंग ने कहा कोई बात नहीं, अब मेरे को पुत्र मोह नहीं होगा, छोड़ो चलते हैं, और रात रात में निकल के चले गए। अब ऋषियों ने देखा कि राज में कोई राजा नहीं है तो डाकू चारों ओर से चोर फैल जाएंगे, प्रजा का सुख कैसे होगा। तब उन्होंने महाराज वेण को जानते हुए कि ये बहुत क्रूर है, अधर्मी है, लेकिन जब तक अधर्म देखा न जाए तब तक इसको स्थापन, इसके इसके अधिकार से, उसके नाने का प्रभाव बहुत ज्यादा था और नाना असुर था, असुरी नाना से असुरी प्रभाव वेण के अंदर था। अब वेण को राजा क्या बनाया, वेण ने सबको कहा आपकी पूजा बंद करो, सबकी पूजा बंद करो, सबकी मेरी पूजा करो। ब्राह्मणों ने कहा तुमको राजा बनाया है, तुम क्यों यज्ञ बंद करा रहे हो, क्यों भगवान की पूजा बंद कराए हो। वेण बोलता है तुम्हें मालूम है कि राजा के अंदर भगवान का आवेश होता है, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, ये मानते हो। बोला हाँ। ब्राह्मण बोला हाँ हम मानते हैं। तो बोला फिर मैं हूं ना, मैं राजा हूं ना, भगवान मुझ में, मेरी पूजा करो ना। ब्राह्मण ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वेण नहीं समझा। तब इन ऋषियों ने ओंकार की, ओम का ऐसा उच्चारण किया कि वेण महाराज का शरीर उधर गिर पड़ा। यहां सीखना चाहिए, जो ब्राह्मण पद दे सकता है वो ले भी सकता है, जो जन्म दे सकता है वो मार भी सकता है। राजा तो बनाया था तो आज वेण का प्राण भी निकल गया। अब फिर ऋषि परेशान हो गए, वेण के शरीर को तेल में रख दिया संभाल के, बड़े औषधियों के अंदर। अब चारों ओर से चोर डाकू फिर फैल गए, राजा नहीं है, क्या करना चाहिए। ऋषियों को फिर कहा गया महाराज अब क्या करना चाहिए। अच्छा अब करना क्या चाहिए, वेण के शरीर को लाइए। वेण के शरीर का मंथन शुरू हुआ, मंथन शुरू हुआ वेण के शरीर का, और अधो भाग का मंथन हुआ, अंदर से काला कलूटा, एक पाप जितना वेण के शरीर में था वो बाहर निकला। निषाद के नाम से जंगल में भेज दिया, जिसका काम चोर करना, डाके डालना। निषाद पहले प्रकट हुआ, फिर सीधे हाथ की बाजू को मंथन किया, महाराज पृथु पैदा हुए। वो वाम भाव के बाह से अर्ची, बाजू से अर्ची की उत्पत्ति हुई। ये दोनों अर्ची और पृथु अयोनी है, माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए हैं, मंथन से उत्पन्न हुए हैं, और बाजू से उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करना इसका कर्तव्य होगा। वो लक्ष्मी नारायण है दोनों, उसी दृष्टिकोण से इन दोनों को जब उत्पत्ति हुई तो सारे देवता आए, सारे देवताओं ने पृथु महाराज का अभिषेक किया, हर एक ने अपनी तरफ से भेंट दी पृथु महाराज को। और भागवत में बहुत लंबा वर्णन लिखा हुआ है हर एक का नाम लेकर, कि सरस्वती ने कंठ में डालने के लिए सुंदर सा वो एक माला दे दी, धर्म ने अपनी तरफ से भेंट दे दी, पृथ्वी ने पहनने के लिए भूदेवी ने स्लीपर दे दिया, सब ने अपनी तरफ से भेंट दी देवताओं ने आकर, और गुणगान करने लगे सारे गंधर्व उसका। पृथ्वी महाराज ने कहा अभी मैंने कुछ किया नहीं है, जब करूं तब आप प्रशंसा करना, ऐसे मुफ्त की प्रशंसा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ऋषि कह रहे थे नहीं नहीं प्रशंसा करो, प्रशंसा करो ये पृथ्वी महाराज। अब पृथ्वी महाराज के पास एक दिन प्रजा आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज भूख मर रहे, देखो पेट में खाने के लिए अन्न नहीं है, कहां जाए, अन्न क्यों नहीं है। बोला पृथ्वी के अंदर से अन्न नहीं उत्पन्न हो रहा है, बड़ी परेशानी। पृथु महाराज ने देखा अच्छा मेरी प्रजा दुखी है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। पृथु महाराज ने वो धनुष जो देवताओं ने दिया था उस धनुष को उठाया, पृथु महाराज रथ के ऊपर आरोह हुए और पृथ्वी के ऊपर ऐसे बाण को कसा, पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी के गाय के रूप को आप हर जगह वर्णन सुनेंगे तो इसलिए सुन लीजिए, पृथ्वी जो आपको दिख रही है, जिसके ऊपर ये पहाड़ है, ये नदियां हैं, ये रास्ता है, ये पृथ्वी का आदि भौतिक रूप है। आदि देविक रूप में पृथ्वी गाय के रूप में रहती है और आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है, भूदेवी, तीन उसके रूप है। आदि भौतिक ये दिखती है पृथ्वी, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। आधिदेविक गाय का रूप धारण कर लेगी। गाय का रूप इसलिए धारण कर लेगी, गाय सबसे ज्यादा सहनशील है पशु। ये पृथ्वी सब पापियों को अपने ऊपर धारण कर लेती है, बहुत बहुत सहनशील है। गाय सबको दूध देती है, ये पृथ्वी सबको 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 खाने के लिए सब चीजें चाहिए वो देती है। वो गाय उसका आदि देविक रूप है। आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी विष्णु पत्नी है। भू देवी के नाम से पृथ्वी की पूजा विष्णु के साथ होती है। अब पृथ्वी देवी आगे भाग रही है, पृथ्वी पीछे भाग रहा है। थकते हुए पृथ्वी हत्था कांपते हुए कहे, आप मुझे क्यों मारते हैं, आप मेरी रक्षा के लिए आए। बोला, मेरी प्रजा भूखी है, तुम क्यों नहीं अन्न देती हो। पृथ्वी कहती है, महाराज आपके आने से पहले यहां इतने अतिताई राजा थे, इतने क्रूर राजा थे, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना अतिक्रमण किया है, इतने पाप अपराध किया है कि मैंने सारे बीज छुपा के रख दिए हैं, वो बाहर निकल नहीं रहे, तो कैसे मिलेंगे मेरी प्रजा को। बोला, आप ऐसे करो, कोई पात्र उत्पन्न करो, उस पात्र के अंदर दोहन करेगा मेरा गौ रूप में, तो आप पृथ्वी सबको, तो पहले पहले स्वयं भूमनु को पात्र करके और मानव के लिए अन्न की उत्पत्ति की, बृहस्पति को पात्र बना के देवताओं के लिए उत्पत्ति की। पृथ्वी महाराज ने अपनी प्रजा में केवल इंसान के लिए नहीं, मानव के लिए नहीं, पशु पक्षी फिर सांप बिच्छू जो भी जीव जंतु है सबके लिए पृथ्वी के से उसका उत्पन्न किया। उसके बाद पृथ्वी महाराज पहले हैं जिन्होंने शहर बनाए, नगर बनाए, टाउन प्लानिंग किया, सरोवर बनाए, लोगों को स्थायी रहने का स्थान दिया, और फिर यज्ञ के द्वारा उत्पन्न जो धन अर्जन था उसमें से ब्राह्मण को योग पाठ और शिक्षा के द्वारा अपना आजीविका, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वेश वाणिज्य के द्वारा, शूद्र सेवा के द्वारा, ये स्थापना पृथ्वी महाराज ने अपने राज में की। और अब पृथ्वी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेके बैठ गए। 99 यज्ञ संपन्न पूरे हुए। इंद्र महाराज के सर के ऊपर खुजली हुई कि ये सतकृतु हो जाएगा, 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरी कुर्सी के ऊपर खतरा। कुर्सी का खतरा इस संसार में नहीं है, इंद्र को भी बड़ी चिंता रहती है। इसलिए कुर्सी, पता है कहां से शब्द निकला है, कुर्सी, ये क को खू है, कुर्सी का मतलब खुर, खुर का मतलब पांव, जो पशु होते हैं उनके खुर होते हैं, तो असल में कुर्सी का मतलब चार पांव वाले पशु वाली बुद्धि। जब आदमी कुर्सी के ऊपर बैठता है तो वैसे पशु जैसा उसका आचरण हो जाता है। कौन सी कुर्सी के ऊपर, जिसके ऊपर नशा चढ़ता है, कौन सा नशा, कुर्सी का नशा जिसको बोलते हैं, वो आदमी इंसान का विचार उसके अंदर से निकल जाता है, देवता ही उसके अंदर से संस्कार निकल जाते हैं, और असुरी प्रवृत्ति का वो निश्चित रूप से उस कुर्सी से खुर, खुर का मतलब पशु बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी हम कहा करते थे, आप कहते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत प्रगतिशील है, अरे तेरी संस्कृति प्रगतिशील है, चार पहियों के ऊपर घूम रहे हो ना गाड़ियों में, जैसे चार जानवरों की तरह चार पहियों के ऊपर घूम रहे हो ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन में 4 व्हील में घूम रहे हैं, तो चार पांव के पशु की तरह बुद्धि तो नहीं सुधरी है, खाने पीने का आपने बहुत व्यवस्था अच्छी की है, भगवत भक्ति तो नहीं की है ना। संसार बहुत पशुवत होता जा रहा है लोगों के अंदर। हरे कृष्णा। एक बहुत भला मानस था, जाता था एक संत के पास। संत के पास जब जाता था तो पत्नी के साथ एक दिन का संत ने बोला, मानव बनो, इंसान बनो बेटा। पत्नी ने घर में कहा, आप कौन से महाराज के बात कहते हो, हमको बोलता है इंसान बनो कि हम उसको गधे नजर आते हैं। अब पत्नी ने ऐसा कहा तो वापस चला गया पति, कहा महाराज मेरे घर में बड़ा झगड़ा हो रहा है, आप हमको मानव बनो ऐसे क्यों कहते हैं। संत ने एक चश्मा पड़ा था दिया, बोला ये जाके घर में लगाना। अब घर में आया, बहुत सुंदर पत्नी कह रही है, आइए आइए पधारिए पति देव। उसने चश्मा ऐसे लगाया, चश्मा लगाता है तो देखता है वो पत्नी ऐसे नाखून लंबे करके, दांत बड़े करके गला दबाने के लिए आ रही है। ये तो पिशाचनी लग रही है, चश्मा उतारे तो सुंदर पत्नी लग रही है। पत्नी को कहा, आप जरा चश्मा लगा के देखो। तो पत्नी पतिदेव को देखती हुई चश्मा लगाए तो बैल जैसा सामने खड़ा है, ऐसे कर रहा है, अरे राम राम राम, ये कि चश्मा उतारे तो सुंदर लग रहा है, चश्मा चेहरे बैल। तब तक चश्मा पहने देखती है लड़की आ रही है बिल्ली की तरह, म्याऊं, इधर से कूद रही है, उधर से कूद रही है, यहां से दूध पी रही है, वहां से कुछ उठा के जा रही है। लड़के को देखा है बंदर की तरह कूद रहा है। अब चश्मे से देखे तो एक बंदर, एक गाय दिखे, एक बैल दिखे, चश्मा उतारे तो सब शांत। तब महाराज को बोला, महाराज ये चश्मा आपका तो हमको हमारा असली रूप दिखा दिया, दिखते नहीं हम मानव है लेकिन काम हमारे पशु जैसे है इस दुनिया के अंदर। तो ये पृथु महाराज ने जब 100 यज्ञ जो 99 यज्ञ पूरे हो गए तो इंद्र की कुर्सी इनको खतरा पड़ गया, इंद्र के अंदर असुरी भाव आ गया, इंद्र के अंदर असुरी भाव तब भी आया आएगा, हम पढ़ेंगे सातवें छठे दिन पे जब गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही थी तब इंद्र के अंदर असुरी भाव आया, भगवान के ऊपर ब्रज के अंदर गायों को डुबाने के लिए ऊपर से वर्षा करने लग गया था। तो यहां इंद्र ने क्या किया, पीले कपड़े सन्यासी के सुंदर पहन के और घोड़े को चुराने लगा। अत्रि ऋषि और यज्ञ से कहता है बेटे को, पृथु के बेटे महाराज को अश्वविजय को, जाइए जाइए देखिए ये सामने आओ अश्व, जो आपका अश्व मिलकर घोड़ा लेके जा रहा है पकड़ो पकड़ो। पीछे जाता है उसका बेटा पृथु महाराज का, अरे सन्यासी के कपड़े पहने हुए हैं, अब साधु के कपड़ों में इसको कौन रोकेगा। अत्रि कहता है ये साधु नहीं है, इंद्र है इंद्र है। इंद्र जब डर के मारे घोड़ा छोड़ गया, घोड़ा वापस लाके बांधा, फिर इंद्र एक बार दूसरे कपड़े पहन के आया। अब जब स्वयं पृथु महाराज उठने लगे मारने के लिए तब सब ने कहा महाराज आप दीक्षा में बैठे हो, यज्ञ में बैठे हो, आपको उठना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और उस वक्त ब्रह्मा जी वहां पधारे और ब्रह्मा जी ने कहा पृथु क्या करोगे 100 यज्ञ करके, भगवान की इच्छा नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशानी ये है इंद्र हर बार एक साधु के कपड़े पहन के आ रहा है, ये तो रावण की तरह साधु का सन्यासी बन रहा है, ऐसे सन्यासी और ज्यादा बन गए जो घोड़े चुराने लगे तो संसार के लोग जाएंगे कहां, घर में कपड़े लाल पहन के आए और घर में आप उसको भिक्षा दो और जाते हुए घर से कोई सामान उठा के चला जाए तो ऐसे साधुओं से तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। और इंद्र के उस भिन्न प्रकार के कपड़े पहनने के बाद बहुत अलग प्रकार के साधुओं के वेशों के लोग में लोग चोरी डाका और बदमाशी करना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो यज्ञ को बेटा, पृथु यज्ञ पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे 100 यज्ञ पूरे करके, आपको कोई किसी की कमी है क्या। और तब भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर चढ़ के वहां पधारे, जैसे ही पृथु ने यज्ञ बंद किया ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर आके ऐसे पधारे, भगवान विष्णु गरुड़ के कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े हैं, पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे, इंद्र साथ आया और इंद्र ने देखा कि पृथु ने मेरे को माफ कर दिया, इंद्र नीचे गिर पड़ा, पृथु ने इंद्र को गले से लगाया, जो द्वेषी था उसको भी गले से लगाया पृथु ने, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए। जो दुश्मन को भी अपना मित्र समझता है द्वेष भूल जाता है, भगवान उधर प्रकट होके उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब पृथु कहता है भगवान बस एक मेरी प्रार्थना है, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं लेकिन डर मेरे को यह है कि लक्ष्मी माता आपके चरणों की सेवा करेगी, वो कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए, वो नाराज हो जाए ना तो आप मेरे को मत छोड़ना कृपा करके। पृथु महाराज नवदा भक्ति में पृथु महाराज पाद सेवन के उदाहरण है, लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, भगवान विष्णु के दो चरण, एक पृथु चाप रहा है और एक की चंपी कर रही है मां लक्ष्मी, अगर भगवान करवट लें और एक मानो पृथु का चरण चला जाए लक्ष्मी के बाद, हो गया ये मेरा नहीं है पृथु का हटाओ यहां से, उसको धक्का दे दो तो दुख किसको होगा, या उसको चुंटी मार के दुख तो विष्णु जी को होगा ना। हम करते क्या है उस एक भगवान की सृष्टि के अंदर बनाए हुए सबके उसके है, बोलते ये मेरा है ये तेरा है, तेरा मेरे घर में क्यों आया, तेरे को घूंसा मारूंगा, अरे एक ही भगवान को कष्ट हो रहा है किसी और को थोड़ी कष्ट हो रहा है, भगवान को ही कष्ट हो रहा है किसी और को थोड़ी कष्ट हो गया, हम इस दुनिया के अंदर इतना सारा कष्ट और दुख दूसरों को देते हैं तो कष्ट तो भगवान को ही होता है। बहरहाल अर्च यहां कथा यहां समाप्त ऐसे होती है, पृथु महाराज को भगवान ने कहा आप राज किया आपने अच्छा किया, अब आपको सनकादि कुमार आएंगे मिलेंगे अंतिम उपदेश देंगे। सनकादि कुमार आए, अब यहां भी देखिए भगवान का अवतार पृथु, भगवान विष्णु का दर्शन पृथु को, उसके बाद भी सनकादि कुमारों से उपदेश लेने की आवश्यकता है। जब संत सनकादि कुमारों ने उपदेश दिया, अर्चि और पृथु राजपाट अपने पुत्रों को देकर और चले गए तपस्या करके, सत्य युग था अष्टंग योग का अभ्यास करके भगवान को प्राप्ति की। अब हरे कृष्ण कहां पहुंचे, समय आपका क्या कहता है, हरे कृष्ण बोलो। यहां हमारे 11, 7 और 5 अध्याय पूरे हुए, कितने हुए 11, 7 और 5, 7 और 5 12 और 11, अब 8 अध्याय और बचते हैं। 23 और 8, 31 अध्याय का चौथा स्कंद है, और 8 अध्यायों में भगवान की प्राप्ति के लिए मोक्ष, मोक्ष का मतलब स्वरूप स्थिति, अपने स्वरूप रूप में स्थित करने के लिए 2 प्रसंग हैं। पहले प्रसंग में पृथु वंश के अंदर, द्रु वंश के अंदर एक बहुत बड़े महान राजा हुए, उसका नाम है प्राचीन बरहित। बरहित राजा कहते हैं और प्राचीन बरहित कहते हैं। इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया कि इस पृथ्वी के ऊपर पूर्वमुखी घास इतना बिछा दिया कि पृथ्वी सारी ढक गई, लेकिन यज्ञ के अंदर पशु की बलि देता था स्वर्ग जाने के लिए। और उसके पुत्र थे 10 और उनका नाम था प्रचेता। प्रचेता थे पुत्र और प्रचेता पुत्रों को कहा, बेटा पहले आप तपस्या कर लो, तपस्या से संपन्न होके जब आओगे तब आप राज करना। ये प्रचेता तो तपस्या करने चले गए, और यहां नारद जी के हृदय में आया दया, करुणा आई। ये प्राचीन बलिद यज्ञ कर रहा है स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और एक रोज एक पशु की बलि चढ़ा रहा है, इसका कैसे उद्धार किया जाए। नारद जी आके कहते हैं, प्राचीन बलि तू आया। प्राचीन बलि ने प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी कहते हैं, राजा ये यज्ञ काहे के लिए कर रहे हैं, ये पशु को क्यों बलि चढ़ा रहे हो, मार क्यों रहे हो? वो देखो ऊपर। और नारद जी ने उंगली ऊपर करके आकाश में वो सारे पशु दिखाए जिसको यज्ञ में बलि दी थी। बोला, प्राचीन बरहित तुम मरने के बाद जाओगे, ये पशु तुम्हारे को मारेंगे, तू ये कार्य काहे के लिए कर रहा है? अब प्राचीन बरहित को समझाने के लिए नारद ने एक उपाख्यान सुनाया जिसका नाम है पुरंजन उपाख्यान। क्या नाम है उपाख्यान का? हरे कृष्ण। पुर का अर्थ होता है नगर, और रंजन का अर्थ होता है मौज मनाना। ये पुरंजन उपाख्यान बहुत बहुत सुंदर उपाख्यान नारद ने पुरंजन उपाख्यान दिया। उस उपाख्यान को समझाना ही प्राचीन भरित, जब उसको समझाया तब प्राचीन भरित घर बार छोड़ के तपस्या करने के लिए चला गया। लेकिन प्राचीन भरित के उपाख्यान को आप सुनने के लिए आपके पास समय है क्या? टाइम क्या हो गया? अभी तो आधा घंटा है भाई। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी तक जो बताया उसमें से क्या याद है? कुछ याद है? पहले धर्म के नाम में यज्ञ, सती ने शरीर त्याग दिया, और भगवान विष्णु के आने के ऊपर सब भगवान शंकर की अपराध कर दिया वैष्णव, तो धर्म पूरा नहीं हुआ। सती फिर कहां गई, इसका कभी आपने पता ही नहीं किया। पार्वती दोबारा बनी, बहुत बड़ी तपस्या की पार्वती ने, वापस शंकर जी को किसकी बेटी होके प्रभा गिरजा मेनका और हिमालय की बेटी हुई, और दोबारा भगवान शंकर से विवाह हुआ, और भगवान विष्णु ने कन्यादान किया। एक त्रियुगी नारायण नाम का केदारनाथ जाते हुए, केदारनाथ आगे है, उससे पहले एक रास्ता ऊपर जाता है, त्रियुगी नारायण कहते हैं, वहाँ वो यज्ञ कुंड है जहाँ विवाह की आहुति डाली थी सती और पार्वती और शंकर के यज्ञ की। अभी भी लोग जाते हैं उसमें, एक आहुति डाल के आते हैं कि हमारी घर गृहस्थी ठीक चले। कभी आप लोग गए, कोई गया है त्रियुगी नारायण? नहीं गया है। केदारनाथ जाते हुए रास्ते में आता है, ऊपर जाना पड़ता है अलग। तो उसके बाद 5 अध्यायों में द्रु महाराज का चरित्र हमने देखा। एक बार कुछ ब्राह्मण इकट्ठे हुए और कहने लगे कि द्रु ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, ये कैसे संभव था? ब्राह्मण ये चर्चा कर रहे हैं इतनी देर में, ऋषियों के बीच में ये विवाद चल रहा है कि द्रु महाराज ने 6 महीने में कैसे भगवान प्राप्त किया, हम तो कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण आया, बोला आइए आइए, एक बहुत सुंदर यहाँ आपको दृश्य दिखाते हैं। नाव लेके आया, नाव में सबको बिठाया, समुद्र के अंदर गए, और समुद्र में जब अंदर गए तो बहुत सफेद पहाड़ दिख रहा है। सब ब्राह्मण कहते हैं, ये सफेद पहाड़ काहे का है? वो ब्राह्मण कहता है ऋषियों को, बोला ये द्रु महाराज की कई जन्मों की हड्डियों हैं, इसकी तपस्या की इससे ये पहाड़ बन गया है। हाँ, द्रु महाराज ने इतनी तपस्या की है, इतने जन्मों में इतने हड्डियों के पहाड़ बन गए? हाँ, और तब तक न वहां पहाड़ था, न हड्डियां थी, न ब्राह्मण थी, न नाव थी। केवल ये सिखाया कि इस जन्म में जिसके पहले तपस्या की होती है, हो सकता है एक दिन में भगवान याद आ जाए और भगवान का भक्त बन जाए। तो इसलिए आप कभी भी कोई छोटा बच्चा भी आए आपके साथ सत्संग में, तो उसको ये मत कहना कि तुम चुप करो यहाँ से चले जाओ। हो सकता है पुराने जन्म में बहुत तपस्या की है तब आके यहाँ भगवान को प्रणाम कर रहा है, नहीं तो बड़ा भी नहीं प्रणाम करता है। सबका सर ऐसे होता है, ऐसे बहुत कम किसी का सर होता है। तो छोटे बच्चों को भी कभी ऐसे एक बार बच्चा बार बार बोल रहा था कथा करता हुआ महाराज, तीन चार बार बोलने के बाद माता जी अपने बच्चे को चुप कराओ। माता जी को पता नहीं पहले से कोई क्रोध था, उठ के खड़ी हो गई, बोला महाराज दो तीन बार मेरा बच्चा बोला है, ये चिल्ला रहे हो एक डेढ़ घंटे से, आप बोल रहे हो, हमने आपको कहा है चुप करो? हमने आपको कभी कहा है चुप करने का? अब दो घंटे से बोल रहे हो, अरे बच्चा को एक बार बोला आप बोलते हैं चुप करो? इसलिए साधु कहते हैं बच्चों को सत्संग में लाया करो, बोलेंगे सोएंगे, लेकिन उंगली पकड़ के आप यहां लाते हो ना बुढ़ापे में आपकी लाठी पकड़ लेंगे। यहां लाओगे तो ये शिक्षा उनको मिल जाएगी, बुढ़ापे की लाठी पकड़ लेंगे। बच्चों से जो कहते हैं बच्चों को सत्संग से निकाल दो, वो शिक्षा ठीक नहीं है। नींद में बच्चे को भी सुबह भगवान की आरती में ले गए तो भी वहां का वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वहां का जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जानते अनजाने में बच्चा भी कम बोलते बोलते किसी वक्त हरी बोल बोल देगा, ये पुण्य कमा लेगा, तो लाने में आपत्ति नहीं है। बात करें बच्चे बोले कोई चिंता नहीं है, लेकिन लाया करो। हरे कृष्णा। अब आइए आगे चलते हैं पुरंजन उपाख्यान को सुनने के लिए। पुरंजन आपको पता, पुर कहते हैं नगर को, जैसे कानपुर नागपुर ये पुर हो गया ना, और रंजन कहते हैं जिसमें सुख भोगा जाए, रंजन कहते हैं मनोरंजन जैसे कहते हैं मन को आनंद जिसमें मिले, तो पुर में रंजन करने वाला। और नवपुरा नव द्वारे पुरे देही, भगवत गीता में भगवान ने इस शरीर को नव दरवाजों वाली देही बोला है। ये हमारा शरीर जो है ना, ये एक पुर है, एक नगर है, इसके नौ दरवाजे हैं, दो आंख है, दो कान है, दो नासिका, एक मुख है, सात के सात हो गए ना, छह और सात, हाँ, दो नीचे उधर मल त्यागने का द्वार, उपस द्वार है, ये हो गए नौ द्वार। ये नौ द्वार की ये देही है। इस देही के अंदर अब कथा कहां से शुरू करें। पुरंजन नाम का एक राजा है, चारों ओर से घूम रहा है संसार के अंदर, भारतवर्ष में आता है, भारतवर्ष बहुत अच्छा लगा उसको, और घूमते हुए बहुत सुंदर कन्या दिखाई दी उसको, कन्या भी बहुत सुंदर थी, और कन्या के पीछे पांच फन वाला सर्प उसकी रक्षा कर रहा था, ग्यारह विशेष रूप से उसके सैनिक उसके चारों ओर से खड़े थे, और कई और सेवादारी पीछे आ रहे थे। पुरंजन ने उसको देखा और देखते उसको बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगा तो कहने लगा आप कैसे घूम रही हैं यहाँ, ये कौन आपके पीछे सर्प है आपकी रक्षा कर रहा है, ये आपके सेवक कौन है, आप कहाँ जाना चाहती हैं, आपको अगर आपत्ति नहीं हो तो आप हमारे साथ रह लीजिए, हम आपके साथ रहना पसंद करेंगे। और इन बातों बातों में पुरंजन ने उस पुरंजनी के साथ विवाह करके उधर रहना शुरू कर दिया। इतनी बात कही तो मानो प्राचीन वैद्य का नारद जी, महाराज ये क्या कह रहे हो आप, इसका अर्थ क्या है? बोला इसका अर्थ ये है कि जीवात्मा कई जोनियों में जगहों जगहों से भटक के जब इस पृथ्वी लोक में, और भारतवर्ष का मतलब भूमंडल, ये जो अपना वर्ष है, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, ये छोटा नक्शा जो अभी भारत का है ये भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, और भारतवर्ष उन नौ वर्षों में है जिस भारतवर्ष में नारद पूजा करता है भगवान नर नारायण की, इस वर्ष की ये पहचान है। अब इस वर्ष के अंदर मानव को केवल मानव जन्म में पृथ्वी के ऊपर केवल भारतवर्ष में कर्म करने का अधिकार है, और यहां जब आता है तो बुद्धि रूपी पुरंजनी, बुद्धि कौन है, पुरंजनी कौन है, बुद्धि, बुद्धि से तदात्म्य करता है कौन, आत्मा। लेकिन जब पुरंजन आया था तो उसके साथ एक अज्ञात मित्र भी था, वो उसको जानता नहीं था, वो उसके साथ सहायक की तरह था। अब दोनों पुर में आके रहने लगे, इस बुद्धि के साथ तदात्म्य कर लिया। बोला ये पांच सर्प कौन है तुम्हारी रक्षा कर रहे? बोला ये पांच प्राण है, ये सांस हम लेते हैं ना, पांच प्राण, प्राण अपान उदान व्यान, ये पांच प्राण है, ये जब तक हैं तब तक शरीर चलता है, प्राण नहीं होंगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। हम कहते हैं प्राण निकल गया, तो पांच फन वाला सर्प प्राण है। बोला ये 11 आपके सैनिक कौन है? बोला ये 11 इंद्रियां, 10 इंद्रियां और 11वां मन जो इनका, ये रक्षक है शरीर के इसके अंदर। पर ये बहुत सारी और सेवक कौन है? बोले ये इच्छाएं है, ये इंद्रियों से इच्छाएं पूरी करने की है। तो ये कौन सा पुर है? ये शरीर रूपी पुर है जिसके अंदर पुरंजन आत्मा पुरंजनी बुद्धि के साथ विवाह करके बैठ गया और बड़ा आनंद ले रहा है। कभी आंख से बाहर घूमने जाता है, आंख वाले दरवाजे से सिनेमा देखने के लिए, टेलीविजन देखने के लिए, बाजार के अंदर खरीदार, कभी कान वाले दरवाजे से गाना सुनने के लिए जाता है, कभी मुख वाले दरवाजे से गोलगप्पे खाने जाता है, भेलपूरी खाने जाता है। ऐसे लिखा है कि इन दरवाजों से पुरंजन बाहर भोग करने के लिए जाता है। ये सारे नासिका, नासिका से कभी सुगंध सूंघने के लिए, कहीं फूल की सूंघने के लिए चला जाता है। और पुरंजन ऐसे बड़ा पुर में आनंद कर रहा है। और एक दिन पुरंजन कहीं शिकार करने चला गया, देर से वापस आया, बहुत मिर्गिया की और वापस आया तो घरवाली मिली नहीं। सेवकाओं से पूछा कहाँ है? बोला नहीं थी, नजर नहीं आ रही है। आप पुरंजन ने जाके देखा, वो तो नाराज है। तब कहता है मैं से बहुत गलती हो गई, आपसे पूछ के नहीं गया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाता तो अच्छा था, आप कृपा करके अभी मेरी बात मान लो। पुरंजनी को दोबारा मना लेता है। ये जीवन में घटनाएं ऐसे, बुद्धि कभी बुद्धि उल्टा काम करती है, और आत्मा भगवान के मंदिर में जाके भजन करना चाहेगा तो बुद्धि बहुत नाराज हो जाएगी, एकदम कहाँ चले गए साधु बन के, भागवत कथा 7 दिन सुनने चले गए थे, घर में काम करना नहीं है। बुद्धि घर में नाराज होके बैठ जाती है। ये पत्नी, ऐसे भी बहुत लोगों घरों में झगड़ा होता है, पत्नी कहती है मैं, पति कहता है कि मैं जाऊंगा आज हरिद्वार, पत्नी कहती है आप हरिघर हरिद्वार जाएंगे मैं जहर खा लूंगी, ये अरे आप कथा सुनने जाएंगे तो हम यहाँ, और पत्नी कहती है मैं सत्संग में जाऊंगे तो पति बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे को निकाल दूंगा। ये बुद्धि का और आत्मा का ऐसे झगड़ा है। यहाँ एक बात सुन लो कि हम दो चीजों के बने हुए हैं, ये शरीर प्रकृति ने दिया है और आत्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममैवांश जीव लिखो, भगवान का अंश है आत्मा, शरीर प्रकृति ने दिया है। संसार में भी बच्चे का जन्म कैसे होता है? माँ बच्चे पूरे के शरीर को बनाती है, पिता केवल बीज देता है, श्री कृष्ण पिता है जिसने ये आत्मा के रूप में बीज दिया है और प्रकृति ने ये शरीर बनाया है। तो शरीर प्रकृति की तरफ खींचता है, इस संसार में भोग करने के लिए ले जाता है, लेकिन आत्मा भगवान के भजन करने के लिए जाती है। इन दोनों के बीच खींचातानी सदा के लिए चल रही है, इसलिए शब्द है कर क्षति, खींचातानी चल रही है, अनादि काल से खींचातानी चल रही है दोनों के बीच में। अब पुरंजन के ऊपर एक जगह एक काल यवन है, उसके पास एक कन्या है, उसका नाम है जरा, और उसको करानी है शादी, और वो ढूंढ रही है। और ये जरा है ये बहुत काली भी है और बड़ी खतरनाक भी है, और इससे कोई शादी करने को तैयार नहीं है। और काल यवन रूपी कौन है? समय। जरा कौन है? बुढ़ापा। और सबसे शादी करना चाहता है बुढ़ापा, शादी करना सबके ऊपर आना चाहता है और कोई बुढ़ापे को नहीं चाहता। ये बात समझ में आ रही? ये बात समझ में? मैं जल्दी बताता इसलिए चल रहा हूं कि पूरी बात बताऊंगा तब ये भी आप भूल जाओगे। तो काल यवन कौन है? समय। समय से बुढ़ापा हमारे से शादी कर लेगा, मतलब हमारे को अपनाएगा, और बुढ़ापे को दे दिया है ज्वर, सेवक बुखार और भय मौत का उसके साथ जुड़ा हुआ है। और आक्रमण करने के लिए उसके पास सेना है, 360 काले सैनिक और 360 गोरे सैनिक हैं, दिन और रात, दिन काले, दिन सफेद सैनिक और रात गोरे सैनिक। और करते क्या है? चारों ओर से आक्रमण करते हैं। जरा, जरा तुम्हारे से शादी करेगी, नहीं करोगे तो तुम्हारे को मारेंगे, करेगी। और अब इंद्रियां लड़ने शुरू करती है, इंद्रियों के बीच में और रात दिन के काल यवन के सेवकों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। एक समय आता है कि आस्ते आस्ते फन वाला सांप ढीला पड़ने लगता है, आंख देखती नहीं है, कान सुनता नहीं है, आस्ते आस्ते इंद्रियां टूटने लगती है, और जरा पकड़ लेती है बुढ़ापा, और जोर आता है, और फिर भय मृत्यु का आता है, और फिर मौत आता है। ऐसे पुरंजन ने जब शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने के समय वो देख रहा है मेरी पुरंजनी, ये मेरे बच्चे, मेरा घर, प्राण निकल गया। और दूसरे जन्म में वो विद्रभ देश में लड़की पैदा हुई। इसलिए पहले दिन मैंने कहा था अब माता जी चिंता मत करना, माता जी के ऊपर कोई चीज आए तो अगले जन्म में आप पुरुष हो जाएंगे और ये भैया माताएं हो जाएंगी, लेकिन कथा सुनने वाले से भगवत धाम में जाएंगे। दुनिया वालों की बात कर रहा हूं, समझ रहे मेरी बात? ठीक है ना, आगे चले। अब विदर्भी, विदर्भ देश में ये लड़की हो गई, कौन? पुरंजन। पहले लड़का था, अब लड़की हो गई। ऐसे कई जन्म हम कभी लड़के हुए, कभी लड़की हुई, कभी बेटा हुए, कभी बेटी हुई, संसार के अंदर कभी कहां गए, कभी कहां गए। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में तो कई जीव, कभी कभी कीट पतंग बन रहे हैं, कभी इंद्र बन रहे हैं, लेकिन कोई भाग्यवान है। कौन भाग्यवान है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, किसी के ऊपर कृष्ण की कृपा हो और कोई साधु संत गुरु के रूप में मिले जो भक्ति के बीज का प्रसाद दे दे तो जीवन सफल है, नहीं तो ये कभी पुरंजन कभी पुरंजनी, कभी विदर्भ देश में अभी पहुंच गया और विदर्भ देश में विदर्भी हुई और इसका विवाह हुआ किसके साथ? मल्याध्वज, मल्याध्वज राजा के साथ। अब मल्याध्वज राजा के साथ इसका विवाह हुआ, बड़ी समस्या की बात है ना, ये बड़ी उपाख्यान बहुत टेढ़े होते हैं। अब पुरंजनी और मल्याध्वज राजा का विवाह आपस में हुआ, मल्याध्वज राजा के साथ पुरंजनी का विवाह हुआ, समय के साथ अच्छा समय गुजरा। कुछ मल्याध्वज भक्ति का प्रतीक है, अब भक्ति की तरफ चलते आगे चलने लगा। अब मल्याध्वज राजा एक दिन प्राण त्याग दिया, पुरंजनी रोने लगी, मेरा पति चला गया, मेरा पति चला गया। तब जो अज्ञात मित्र था ना, उसने कहा किसका पति, किसका पति, किसका पति, ये तुम इसको पति मान रही है, पहले तो तुम पति थे और पुरंजनी तेरी पत्नी थी, पर तुम कौन हो? बोला मैं तेरा मित्र हूं, तुम मेरे को जानते नहीं थे, परमात्मा हम सबके साथ अज्ञात मित्र रूप के रूप में सदा बैठा हुआ है। वेदों का मंत्र है कि एक वृक्ष के अंदर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी जीवात्मा है जो इसका फल भोगता है, दूसरा पक्षी परमात्मा है जो केवल साक्षी है। वो परमात्मा रूपी पक्षी, उसकी तरफ अगर हम केवल मुंह करके देख लें तो हमारे दुख सब दूर हो जाएंगे। अभी हम उसको पीठ देके बैठे हैं, कैसे? वो हिंदी में कैसा आंकड़ा होता है? 36 का, 36 का आंकड़ा कैसे होता है? 6 और 36 उल्टा होता है ना, पीठ होती नहीं दूसरे को। इस वक्त परमात्मा और जीवात्मा कैसे बैठे? 36 का आंकड़ा, एक जगह बैठे लेकिन देख नहीं रहे। अब भगवान की कृपा से कोई उंगली से पकड़ के जीवात्मा को ऐसे घुमा के 63 बना दे तो भगवान का दर्शन हो जाए। 36 से केवल 63 बनना है, और ये कान से पकड़ के कोई साधु ऐसे करेगा तब होगा, अपने आप नहीं होगा। इस संसार में आपको मालूम है, डॉक्टरी में हम कहते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होना होता है ना, तो नॉर्मली सब बच्चों का जन्म हो जाता है, लेकिन जिस बच्चे का जन्म नॉर्मल नहीं होता है उसको डिफिकल्ट लेबर बोलते हैं अंग्रेजी में। डिफिकल्ट लेबर का मतलब बच्चा जन्म, डॉक्टर की, डॉक्टर अगर कुछ नहीं कहेगा तो जन्म नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है? जो बच्चा अपने आप नेचुरली नहीं पैदा होता है उसका कारण एक ही है, बच्चा जन्म लेने से पहले ये बच्चे की ठोड़ी छाती से लगी होती है, हाथ ऐसे होते हैं और सर नीचे होता है, ये बच्चे का गर्भ में रूप होता है। जिस बच्चे का ये ठोड़ी यहां लगने के बजाय ऐसे हो गई, उसका जन्म अपने आप नहीं होगा, उसको डॉक्टर सर को ऐसे पकड़ के या ऐसे करेगा या पेट फाड़ के निकालेगा, और रास्ता ही नहीं। ऐसे इस संसार सागर में जो आदमी निम्रता से ऐसे चलता है वो संसार सागर से पार हो जाएगा, जिसका सर नीचे हो गया वो, और जिसका सर ऐसे हो गया फिर डॉक्टर उसका गला दबाएगा तब सीधे होगा। तो ये संसार से निकलने के लिए वो 36 से 63 करने से लिए कान पकड़ना पड़ता है, कान पकड़ के उसको घुमाना पड़ता है। घुमाने का अर्थ क्या है? अभी हम संसार में है और घुमा के भगवान की तरफ करना पड़ता है, केवल घुमाने से काम बन जाएगा। केवल भगवान की तरफ मुंह हो गया तो सब समस्या समाधान हो गई। अब प्राचीन भरी के आप क्या कह रहे हैं? बोला मैं आपको ही कह रहा हूं महाराज, आपके शरीर में परमात्मा बैठा हुआ है, ये सब आप कर रहे हो ठीक नहीं है। प्राचीन भरित को एकदम अब प्रकाश हो गया कि मैं कहां फंसा हुआ हूं, ये मैं यज्ञ याग करके अपना जीवन अब मेरे को भगवान को प्राप्त। और प्राचीन भरित चले गए वन में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए। ये बार बार भागवत में मिलेगा, राजा महाराजा राज छोड़ के वन में चले जाते थे, तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे। राज में सुख होता तो राज में रहते ना, नहीं रहते थे। अब प्राचीन बरहित के राज छोड़ के जाने के बाद उनके 10 पुत्र गए थे जो तपस्या, उनका वर्णन सुन लीजिए। दस पुत्र गए तपस्या करने के लिए, संकल्प पिताजी की आज्ञा ले गए तपस्या करने के लिए, पिताजी की आज्ञा भगवत प्राप्ति का संकल्प। भगवान शंकर एक जगह देखा एक सरोवर, सरोवर के अंदर से आवाज आ रहा था, आवाज की ध्वनि को सुन के खड़े हो गए। भगवान शंकर अंदर से निकले, बड़े प्रसन्न हुए, बेटा भगवान को प्राप्त करने जाते हो, मैं आपको गीत सुनाता हूँ, आपको भगवान प्राप्ति का रास्ता बताता हूँ। भगवान शंकर कोई भगवान को प्राप्त करना जाएगा तो उंगली से पकड़ के भगवान के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। आज भी वृंदावन में हमको कई संत मिलते हैं जो बहुत बड़े भगवान शंकर के भक्त थे, लेकिन क्योंकि भगवान प्राप्त करना चाहते थे आज ब्रज के अंदर वो तुलसी के सामने बैठकर गोपाल गोपाल जप रहे हैं। ये भगवान शंकर की अनुकंपा है, कृपा है, वो परम वैष्णव है। भगवान को प्राप्त करोगे तो भगवान की तरफ ले जाएगा, तुझ चीजें मांगोगे तो कहेगा जाओ भंग पियो या भांग पियो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। भगवान नहीं पाओ तो फिर भांग पीनी पड़े, या भगवान लो या भांग लो, दोनों में से एक चीज लो। भगवान शंकर के पास दो ही चीजें, या भांग या भगवान। तो प्रायः लोग सब भांग की तरफ जाते हैं, भगवान वालों को सिर्फ वृंदावन भोजते हैं। तो ये बहुत बड़ी विचित्र बात है, समझ में आएगी तब समझेंगे। हरे कृष्णा, सब कुशल मंगल है, हरे श्याम। अब प्राचीन बरहित की कथा पूरी हो गई, प्रचेताओं को सुनने का प्रयास करते हैं, 5 मिनट में पूरी कर लेंगे। भगवान शंकर ने कृपा करके रुद्र गीत दिया, जिसके द्वारा भगवान विष्णु की और जाके तपस्या की प्रचेताओं ने, और साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान विष्णु उनके पास गरुड़ के ऊपर आए, पधारे, आशीर्वाद दिया, भगवान विष्णु का दर्शन किया। होने के बाद वापस आ रहे हैं प्रचेता, 10 भाई वापस आ रहे हैं, और 10 भाइयों में झगड़ा कभी नहीं हुआ। प्रचेताओं की कथा जो सुनेगा उसके घर में कभी भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, बड़े प्रेम से अपने साथ रहेंगे, ऐसा श्रुति फल दिया है सुखदेव गोस्वामी ने। और ये प्रचेता वापस लौट के अपने नगर में आते हैं, राज में, राजा कोई नहीं चारों ओर, बहुत वृक्ष बने हुए हैं और वन हो गया है, कहीं रास्ता भी नहीं है जाने का। एकदम क्रोध आ गया और क्रोध अंगड़ी से वन को जलाने लगे। वनस्पतियों का राजा भगवान चंद्रमा आया, बेटा सबको जला क्यों रहे थे, आप राजा हो, इनकी रक्षा आपको करने, और फिर आपके लिए इस वनस्पतियों की कन्या, इनके साथ आपका विवाह करते हैं। ये परमलोचना की बेटी है, ये मृषा, इससे आपका विवाह करते हैं, आप इनको ले लीजिए, आप वन को मत जलाइए। देखना, एक ध्यान देने की बात है, शंकर भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया, भगवान विष्णु का दर्शन किया, फिर भी प्रचेता वापस आए तो क्रोध आया। आया क्रोध के नहीं आया? क्रोध फिर भी आया। ये संसार में कई जन्मों से, एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से हम भगवान से विपरीत चलते आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए साधु संग मिलता है, मन करता है हम अभी जाके हरे कृष्णा जपेंगे, और यहां से जब 20 तारीख को जाएंगे गाड़ी में, गाड़ी यहां से 50 किलोमीटर दूर जाएगी, कहेंगे अब काम ही तो कम, बहुत काम करने हैं, बाद में कभी सोचेंगे भगवान का नाम लेने का। उतने दूर जाने के बाद सब बातें भूल जाएंगे, कथा वथा सब हवा के ऊपर, सर के ऊपर से उड़ जाएगी। और भगवान को इसकी चिंता नहीं है, भगवान ने कहा मैंने तो आपने कहा था इसलिए संसार में भेजा है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा अनुग्रह करते हैं। अब प्रचेता तो उसके बाद विवाह किया, राज किया, उनको दोबारा पुत्र दक्ष पैदा होगा, और वो दक्ष कौन सा, वही जो बकरी के सर के बाद बहुत दुखी हुआ, तपस्या की, भगवान को प्रार्थना की, प्रचेताओं का पुत्र दक्ष होगा, 5वें स्कंद में उसका दर्शन करेंगे। अब प्रचेताओं के पास नारद मुनि आया, फिर नारद मुनि आके उपदेश देता है, अंतिम अध्याय 4 स्कंद का। नारद का उपदेश बहुत उत्तम उपदेश है, बड़ा अद्भुत उपदेश है नारद का उपदेश प्रचेताओं को अंतिम अध्याय में। नारद भैया, शंकर की कृपा, भगवान शंकर की कृपा, विष्णु का दर्शन, फिर भी क्रोध। अब नारद आके कहते हैं, जड़ को जल देने से वृक्ष सारा हरा भरा होता है। एक भगवान गोविंद के चरणों में भक्ति कर लो, संसार में आना जाना चालू रहेगा। विशेष रूप से सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते, इस दुनिया में 33 करोड़ देवता हैं, किस किस को खुश करेंगे। एक भगवान को प्रसन्न करने से सब सुखी हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देते हैं नारद जी, एक जड़ में जल डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, पत्ते, टहनियां, फल, फूल। एक पेट में भोजन डालने से पूरा शरीर सुखी हो जाता है। कमाता तो हाथ है, मजदूरी, पांव लेके जाता है, बुद्धि से, अकुल से कमाते हैं, पैसा लाते हैं, लेकिन भोजन बना के पेट में डालेंगे तभी सारा शरीर पुष्ट होगा। हाथ अगर कहे कि मैं कमा के लाया हूं और मेरे ऊपर गुलाब जामुन रखो, मैं इसका आनंद लूंगा, तो एक आधा घंटा गुलाब जामुन रहेगा, हाथ थक जाएगा, गुलाब जामुन गिर जाएगा। लेकिन मुंह में डालेगा तो हाथ को भी शक्ति मिलेगी, पांव को भी मिलेगी और सर को भी मिलेगी। जैसे पेट में भोजन डालने से शरीर संतुष्ट होता है, जड़ में जल देने से वृक्ष संतुष्ट होता है, ऐसे एक भगवान की भक्ति करने से, एक गोविंद के चरणों को पकड़ने से सारे संतुष्ट देवता हो जाते हैं, पितृ हो जाते हैं, ऋषि हो जाते हैं, और किसी को नहीं अलग पूजा करने से भी भगवान की पूजा से सबका उद्धार हो जाता है। प्रचेताओं ने जब ये सुना, नारद के उपदेश के बाद प्रचेता भी भगवान को प्राप्त करने के लिए चले गए। अभी हम यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं, कल पांचवें स्कंद को शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी को कोई जिज्ञासा, प्रश्न? क्या वो अभी आरती के बाद ना? अच्छा, ये अभी दिखाएगा क्या? इसका क्या प्रोग्राम है? इसमें कुछ है क्या इसके पास? हरे कृष्णा, आरती कर ले। सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल, सेकंड शुरू कर जो क्या है।